From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the first session of the 183rd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating here in the Conference Center and throughout the world, wherever you may be. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I conduct this session. We acknowledge the general authorities, general auxiliary presidencies, and others who are in attendance this morning. The music for this session will be by the Tabernacle Choir, under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Andrew Unsworth and Clay Christiansen at the organ. The choir opened this session by singing "How Wondrous and Great." We will now favor us with "Now Let Us Rejoice." The invocation will then be offered by Elder Kent F. Richards of the 70.
Rejoice in the day of salvation. No longer as strangers on earth. Our beloved Father in heaven, we express
gratitude to you for this sweet privilege. हम आपके लिए आभार प्रकट करते हैं इस यहाँ आने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में. हम आपका आभार प्रकट, विशेषकर अपने भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं. आप सब, आप उनके और उनके परिवार पर आशीष दीजिए, ताकि उनके काउंसलर्स को आप आशीष दीजिए जो जो कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं. परमेश्वर पिता, आपसे मांगते हैं उन सब के लिए, मिशनरी प्रचारक, जो भी प्रचारक दुनिया भर में कर रहे हैं उनके साथ हो. ये बहुमूल्य यंग वुमन और यंग मैन सर्व करते हैं, हम उनके साथ खड़े हों और सबको यीशु मसीह के सामने आने के लिए निमंत्रण कर सकें. हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा सबके हृदयों को छुएगी, हम एक अच्छी समझ पा सकें जो भी संदेश हमें यहाँ दिए जाते हैं, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें और इस काम को पूरा कर सकें. हम आपकी आशीष अपने यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन.
It will now be our privilege to hear.
अब हम सौभाग्य से हमारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन को सुनेंगे. उनके टिप्पणी के बाद गायक मंडी गाएगी. Israel, Israel, God is calling. अब हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स 12 प्रोहितों के परिषद के कृपया कर सुनेंगे. इसके पश्चात एल्डर उलिसन सोर्स 12 प्रोहितों के प्रदेश के अध्यक्षता से होंगे. बहन कैरोल एम स्टीफन सहायता संस्था की जनरल अध्यक्ष के में प्रथम सलाहकार बाद में हमें संबोधित करेगी. प्रेजेंट मॉनसन.
भाई और बहनों, एक बार फिर से मिलने में बहुत अच्छा लग रहा है. 183 साल हो चुके हैं जब भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने गिरजे को प्रभु के निर्देशन में स्थापित किया था. 6 अप्रैल 1830 को उस सभा में गिरजे के 6 सदस्य उपस्थित थे. ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी होती है कि 2 हफ्ते पहले गिरजे की सदस्यता 15 मिलियन हो चुकी है. गिरजा स्थिरता से आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक साल अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बदल रहा है. ये पृथ्वी के चारों ओर फैल रहा है क्योंकि हमारे प्रचारक उनकी खोज कर रहे हैं जो सच्चाई को पाना चाहते हैं. 1 साल हो चुका है जब मैंने प्रचारक सेवा की आयु को कम करने की घोषणा की थी. तब से पूरे समय से प्रचारकों की संख्या अक्टूबर 2012 में 58,500 से बढ़कर आज 80,333 हो गई है. किसी भी धर्मशास्त्र में कोई भी घोषणा अधिक उपयुक्त नहीं, कोई भी जिम्मेदारी अधिक निर्माण करने वाली नहीं, कोई भी निर्देश इतना स्पष्ट नहीं जितना और कि वह निर्देश जो पुनर्जीवित प्रभु ने गलील में कहा था जब वे 11 शिष्यों को प्रकट हुए थे. उन्होंने कहा था, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो. भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा था, सब कुछ कह चुकने के बाद सबसे महान और महत्वपूर्ण कार्य सुषमाचार का प्रचार करना है. आप में से कुछ यहाँ भी अभी भी अध्यक्ष डेविड ओ मिके के जाने पहचाने वाक्य की याद होगी, प्रत्येक सदस्य प्रचारक है. उनके शब्दों के साथ मैं अपने शब्द जोड़ता हूँ. अब प्रचारकों और सदस्यों को आगे आकर मिलकर लोगों को उसके पास लाने के लिए प्रभु के बाग में कार्य करने समय उसने हमारे लिए सुसमाचार बांटने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन बनाए हैं और हमारे परिश्रम में हमारी मदद करेगा यदि हम विश्वास के साथ उसके कार्य को पूरा करते हैं। इस हमेशा बढ़ती प्रचारकों की संख्या को बनाए रखने के लिए मैंने पहले भी हमारे सदस्य को गिरजे के जनरल मिशनरी फंड में योगदान देने के लिए कहा है, जितना वे कर सकते हैं। इस अनुरोध का जवाब संतोषजनक रहा है और हजारों प्रचारकों को सहायता की गई है जिनकी परिस्थितियों उनकी सहायता नहीं कर सकती है। मैं आपके उदार योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मदद की जरूरत जारी रहती है ताकि हम उनकी मदद कर सकें जो सेवा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पास इसे करने के साधन नहीं है। अब भाइयों और बहनों, हम यहाँ निर्देशन और प्रेरणा पाने के लिए आए हैं। अगले दो दिनों में विभिन्न सुसमाचार विषयों पर बहुत से संदेश दिए जाएंगे। जो पुरुष और महिलाएं आपका संबोधन करती हैं और जो संदेश वे देंगे उसके लिए उन्होंने स्वर से मदद पाने की खोज की है। मेरी प्रार्थना है कि हम प्रभु की आत्मा से भर जाएं जब हम इन्हें सुनते और सीखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Thank you, President Monson, for your teaching example.
आपका धन्यवाद करते हैं अध्यक्ष मॉन्सन आपकी मसीह के समान सेवा के उदाहरण और आपकी शिक्षा के लिए हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं हमारे युग में उदारकर्ता यीशु मसीह संदर्भ करते हैं संतों का एकत्रित होना मेरे जनरल सम्मेलन के रूप में जहाँ कहीं भी इस संसार में हैं फिर भी हम इस विवरण को प्राप्त करते हैं मैं गवाही देता हूँ कि हम उसके सम्मेलन में एकत्रित हैं मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हम उसके वचन सुनेंगे इसके लिए उसने कहा है चाहे मेरी अपनी वाणी के द्वारा या मेरे सेविकों की वाणी के द्वारा यह सामान्य है सम्मेलन हमेशा से यीशु मसीह के सच्चे गिरजा का भाग है आदम ने अपने आने वाली पीढ़ी को एक साथ इकट्ठा किया और आगे होने वाली बातों की भविष्यवाणी की थी मूसा ने इसराइलों को एकत्रित कर और उन्हें उसकी प्राप्त की हुई आज्ञाओं की शिक्षा दी थी उद्धारकर्ता ने भीड़ को दोनों जगह पवित्र भूमि और अमेरिका महाद्वीप में एकत्रित कर शिक्षा दी थी पत्रस ने यरूशलेम में विश्वासियों को एकत्रित किया था अंतिम दिनों का पहला जनरल सम्मेलन गिरजाघर की स्थापना के 2 महीने बाद ही संयोजित किया था और उसे आज तक लगातार किया जा रहा है यह सम्मेलन हमेशा प्रभु के निर्देशन में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में किया जाता है वार्ताकार के रूप में हमें विशेष शिक्षक नहीं दिए जाते हैं कई सप्ताह और माह अक्सर रातों को सोए बिना हम प्रभु का इंतजार करते हैं उपहास प्रार्थना अध्ययन और चिंतन करने के द्वारा हम संदेश सीखते हैं जिसे वे हमसे दिलवाना चाहता है कोई पूछ सकता है प्रेरणा अधिक आसानी से और जल्दी क्यों नहीं आती है प्रभु ने ओलिवर कॉर्डरी को शिक्षा दी थी तुम इसका अध्ययन अपने मनों में करो तब तुम पूछो कि ये सही है सम्मेलन का संदेश हमारे पास प्रार्थना पूर्वक तैयारी से पवित्र आत्मा के द्वारा आता है गिरजे के सभी सदस्यों के लिए यह सिद्धांत सत्य है जैसे कि हम वार्ड स्टेक और जनरल सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयारी करते हैं हम अपने मनों में अध्ययन करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता से क्या जरूरत और अभिलाषा है और हम समझने की प्रार्थना करते हैं और जो हमें सिखाया गया है को लागू करें जिस सम्मेलन का समय आता है हम दूसरी गतिविधियों का त्यागते हैं इस संसार की बातों को अलग रखते हैं अच्छी बातों को ढूंढने के लिए तब हम अपने परिवारों को प्रभु के वचन सुनने के लिए इकट्ठा करते हैं जैसे राजा बेंजामिन ने लोगों से किया था बच्चों और युवाओं को शामिल करना पसंद है हम गंभीर गलती करते हैं यदि हम मनाने लगे कि सम्मेलन उनके जहन और आत्मिक भावनाओं से ऊपर है गिरजे के युवा सदस्यों से मैं वादा करता हूँ यदि आप सुनेंगे आप अपने भीतर अच्छे से आत्मा के एहसास को महसूस करेंगे प्रभु आपको बताएगा कि वह आपसे क्या करना चाहता है सम्मेलनों में हम प्रभु के वचन प्राप्त करते हैं जो कि सिर्फ हमारे लिए ही होते हैं एक सदस्य ने गवाही दी थी जैसे मैं आपके वार्ता को सुनता हूँ मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ आपकी वार्ता मेरे परिवार के लिए प्रभु का सीधा व्यक्तिगत प्रकटीकरण है मैंने अपने जीवन में ऐसे आत्मा का दृढ़ प्रदर्शन का अनुभव नहीं देखा उन क्षणों में जब पवित्र आत्मा जैसे सीधे मुझसे ही बात करता हो अन्य ने कहा मैंने पहले कभी इतना गंभीरता से महसूस नहीं किया कि वार्ता मेरे लिए ही दी गई हो यह मुमकिन है क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु के वचन को लेकर हमारे हृदय में आता है जिसे हम समझदारी कहते हैं जब मैं सम्मेलन के दौरान नोट लेता हूँ, मैं वैसा ही हमेशा नहीं लिख पाता जो वार्ताकार बोल रहा होता है। मैं आत्मा के द्वारा मुझे दिए गए व्यक्तिगत निर्देशन के नोट लिखता हूँ। जो कहा जा रहा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम क्या सुनते हैं और हम क्या महसूस करते हैं। तभी तो हम परिश्रम कर सम्मेलन का अनुभव बैठ कर करते हैं, वहाँ जहाँ पर शांत धीमी आत्मा की आवाज़ को स्पष्टता से सुनी, महसूस और समझी जा सके। ओ, हमें कैसे जनरल सम्मेलन की आवश्यकता है। पूरे सम्मेलन में हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हमारी गवाहियाँ गहन होती हैं, और जब हम पवित्रित होते हैं हम एक दूसरे को इन अंतिम दिनों के प्रचंड वेग के बीच में खड़े रहने में समर्थ देते हैं। पिछले 10 सालों में बड़े संख्या में पूर्व संतों ने भयानक गलतफहमी और उत्पीड़ना के अनुभवों के द्वारा गिरजे को छोड़ दिया था। यह हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा। संसार प्रभु से तेजी से और दूर होता जा रहा है, पहले से कहीं ज्यादा। शत्रु को पृथ्वी पर छोड़ दिया गया है। वह हम भविष्यवक्ता के शब्दों को देखते, सुनते, पढ़ते, अध्ययन करते और बांटते हैं। पहले से सचेत करने की और सुरक्षित होने के लिए, उदाहरण के लिए परिवार, एक दुनिया का घोषणा बहुत पहले ही दी गई थी। हम अब परिवार में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जीवित मसीह प्रेरितों का गवाही पहले से ही तैयार कर दी गई थी कि कब हमें इसकी अधिक जरूरत पड़ेगी। हमारे सारे कारण नहीं पता कि क्यों भविष्यवक्ता और वार्ताकर्ता सम्मेलन में ऐसे शिक्षकों से संबोधित करते हैं, परंतु प्रभु करता है। अध्ययन हॉरल्ड बेली ने सिखाया था, हमारी एकमात्र सुरक्षा है इस गिरजे के सदस्य होने की। वचनों और आज्ञाओं को सुने जिसे प्रभु द्वारा उसके भविष्यवक्ता को दिए जाते हैं। इन बातों में कुछ तो होता है जो कि धैर्य और विश्वास लाता है। गिरजे के अधिकारियों से आए हुए आपको शायद पसंद ना आए, या शायद आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण के विरुद्ध हों, या शायद आपके सामाजिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हों, या शायद आपके सामाजिक जीवन के मध्य आए। परंतु यदि आप इन सब बातों को सुनेंगे जैसे ये स्वयं प्रभु के मुख से आ रहा हो, धैर्य और विश्वास के साथ, वादा यह है कि अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे और प्रभु परमेश्वर अंधकार की शक्ति को आपके सामने से हटाने लगेगा और स्वर्ग आपके अच्छे कामों से कांपेगा और उसके नाम की महिमा होगी। अध्यक्ष ली कैसे जानते थे कि हम हमारे दिन में क्या झेलेंगे? वे जानते थे क्योंकि वह भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता थे। और यदि हम भविष्यवक्ताओं को सुनेंगे और मानेंगे अभी वह भी जो इस सम्मेलन में बोलते हैं, हम सुरक्षित और बलवंत होंगे। सम्मेलन समाप्त होने के बाद जनरल सम्मेलन की महान आशीषें हमारे पास आती हैं। याद रखें, धर्मशास्त्र में लगातार इसका नमूना लेखनित है। हम प्रभु के वचनों को सुनने को एकत्रित हुए हैं और हम अपने घरों में लौटकर उन्हें जीते हैं। राजा बेंजामिन का अपने लोगों को सिखाने के बाद उसने भीड़ को खारिज कर दिया और वे लौट गए थे, हर कोई अपने परिवारों के साथ अपने घरों में। उसके दिनों में राजा लिमी ने यह भी वही किया था। बाउंडीफुल मंदिर में लोगों को सिखाने और सेवा करने के बाद उद्धारकर्ता ने लोगों से निवेदन किया, इसलिए तुम अपने अपने घरों को जाओ और जिन बातों को मैंने कहा उन पर विचार करो और मेरे नाम पर पिता से उनको समझने की याचना करो और अपनी अपनी बुद्धियों को कल के लिए तैयार करो और मैं तुम्हारे पास कल फिर आऊँगा। हम उद्धारकर्ता के निमंत्रण को ग्रहण करते हैं, जहाँ हम चिंतन करते और प्रार्थना करते हैं जो सिखाया गया था और तब जाकर और उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। अध्यक्ष किम्बल के शब्द याद हैं, मैंने अपना मन बना लिया था कि जब मैं इस जनरल सम्मेलन से घर जाऊं यहाँ पर कहीं मेरे जीवन में कई क्षेत्र हैं जिसमें मैं पूर्ण हो सकता हूँ। मैंने उन सब की एक सामूहिक सूची बनाई और जितनी जल्दी होगा मैं स्वीकार कर उन पर काम करूँगा, जैसे कि हम वहाँ से निकलते हैं। अध्यक्ष मानसन ने हाल ही में कहा, मैं तुम्हें वार्ताओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ और संदेशों में जो है उस पर चिंतन करें। मैंने अपने खुद के जीवन में पाया कि इस प्रेरणा से भर संदेशों से मुझे अधिक लाभ पहुँचा जब मैं इनका गंभीरता से अध्ययन करता हूँ। व्यक्तिगत और परिवार धर्मशास्त्र अध्ययन करने के अतिरिक्त स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम नियमित रूप से अध्ययन करें और जो कुछ भी हमने सम्मेलन में से सीखा है को लागू करें। मैं साक्षी देता हूँ कि वह जो प्रभु में विश्वास रखते हैं और इस सलाह को विश्वास से सुनते हैं, महान आशीष की शक्ति से अपने को, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। स्वर्गीय पिता रास्ता प्रदान करता है। इस सम्मेलन में गिरजे के 97% इन संदेशों को अपनी भाषाओं में सुन सकते हैं। लाखों की संख्या में 197 देशों 95 भाषाओं में इस सम्मेलन को देखेंगे। लगभग 2 या 3 दिनों में संदेश lds.org अंग्रेजी में आ जाएगा और 1 सप्ताह में ये 52 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अब हम जनरल सम्मेलन के 3 सप्ताह के भीतर गिरजा की पत्रिका छपाई करके प्राप्त करेंगे। हमें अब महीनों महीनों वार्ताओं की डाक के जरिए आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर, फोन या अन्य बिजली के उपकरण हम पढ़, सुन और देख और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा को बांट सकते हैं। कभी भी कहीं भी हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने विश्वास और गवाही को बलवंत करते अपने परिवारों को सुरक्षा और उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। इस सम्मेलन के संदेश युवा पाठ्यक्रम में ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। अभिभावकों, आप युवा पाठ्यक्रम को स्वयं भी lds.org पर देख सकते हैं। जानिए कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उसे अपने अध्ययन का भी, परिवार चर्चाओं का, पारिवारिक घरेलू संध्या में, परिवहन परिषद और अपने बच्चों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करने का हिस्सा बनाइए। मैंने सभी सदस्यों को गिरजे की वेबसाइट और मोबाइल एप्स के सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे लगातार सर्वे किए जाते हैं ताकि उसका इस्तेमाल आसान और अधिक हमारे जीवन के अनुरूप हो। lds.org पर आप सुसमाचार के अध्ययन करने के लिए, आपके घर में घर और परिवारों को मजबूती देने के लिए और आपकी बुलाहट में सेवा करने में मदद करने के लिए सामग्री पाएंगे। वहाँ पर प्रयुक्त साधन पूर्वजों का पाएंगे जिनका मंदिर धर्मविधियों करने की आवश्यकता हो और उद्धार के काम का समर्थन करने के सुसमाचार प्रसार के लिए सामग्री शामिल है। अभिभावक अपने बच्चों को बत्तीसवां की पुरोहित और पूरे समय का प्रचार कार्य करने की तैयारी करा सकते हैं। वे मंदिर धर्मविधियों के और अनुबंधों के और अनंत जीवन की आशीषों के योग होने के सीधे और सक्रिय मार्ग पर चलने में मदद कर सकते हैं। पिछले अप्रैल जनरल में सम्मेलन में जनरल पुरोहित सभा में मैंने अपने पिता का बनाया हुआ एक शस्त्रों से ग्रस्त योद्धा का चित्र से परमेश्वर के शस्त्रों के बारे में और उससे आत्मिक सुरक्षा मिलती है सिखाया था। उस अधिवेशन के खत्म होने के बाद पिता उसके परिवार को रिपोर्ट करता है कि उसने क्या सीखा। उत्प्रेरित करते हुए उसका पुत्र जेसन lds.org को खोजता हुआ कि वह स्वयं संदेश सुनेगा। कुछ दिनों बाद वह पारिवारिक घरेलू संध्या में अपने भाइयों और बहनों के साथ पाठ बांटता हुआ यहाँ है। वह एक साधारण सम्मेलन संदेश प्रभु से प्रेरित बच्चे द्वारा ग्रहण किया गया, एक परिवार को व्यक्तिगत शक्तिशाली तरीके से सिखाया गया। मैं इसकी योग्यता के कवच से प्रेम करता हूँ। मैं उसकी ढाल में विश्वास करता हूँ। यह सम्मेलन की आशीषें हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी विशेष गवाही देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और इस गिरजे का प्रमुख क्या होकर खड़ा है। यह उसका जनरल सम्मेलन है। मैं आपसे उसके नाम से वादा करता हूँ कि यदि आप सच्ची कामना से प्रार्थना करते हैं, आप अपने परमेश्वर के पिता की आवाज़ को इस सम्मेलन के संदेशों से सुनेंगे। आप पाएंगे कि आपकी मदद करने के लिए वे आपसे बोला है, आपको बल देता है और अपनी उपस्थिति में घर का नेतृत्व करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Mormon taught that a man can't have
faith. Mormon ने सिखाया था कि वह मनुष्य जो हृदय से दीन और नम्र नहीं होंगे, वह विश्वास और आशा प्राप्त नहीं कर सकता। उसने आगे कहा था कि इन गुणों के बिना विश्वास और आशा व्यर्थ है, क्योंकि हृदय से दीन और नम्र के अलावा परमेश्वर के सामने और कोई भी स्वीकार्य नहीं है। दीनता गुणता है जो मनुष्य के भय खाते, धार्मिक विनम्र सिखाने योग्य और कष्ट में धैर्य रखते हैं। जिन लोगों के पास यह गुण होता है, वे यीशु मसीह और वे स्वभाव से शांत, नम्र, सहनशील और आज्ञाकारी होते हैं। पैतृस पौलुस ने सिखाया था कि दीनता आत्मा का फल है, इसलिए इसे बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम आत्मा में जीवित हैं, आत्मा में जीवित रहने के लिए हमारे रहन सहन से प्रभु के सम्मुख धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए। जब हम यीशु मसीह का नाम अपने ऊपर धारण करते हैं, ये आशा की जाती है कि हम उनके गुणों को अपनाने और उसके समान बनने के लिए हम प्रतिदिन अपने चरित्र में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। उद्धारकर्ता ने अपने चेलों को चेतावनी देते हुए कहा था, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा स्वर्ग में तुम्हारा पिता सिद्ध है। यदि हम मसीह के पास आते हैं, सारी अधार्मिकताओं को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब मसीह के अनुग्रह से वह दिन आएगा जब हम परिपूर्ण हो सकेंगे। मसीह के जैसे गुण परमेश्वर से प्राप्त उपहार है। ये गुण तब आते हैं जब हम अधर्मिकता से अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। परमेश्वर का प्रसन्न करने की इच्छा से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और इच्छा से और उत्सुकता से उद्धार करते हैं। दीनता मसीह के जैसे बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम ये महत्वपूर्ण गुणों का विकास करने के योग्य नहीं होंगे। दीन होने का अर्थ कमजोर होना नहीं, लेकिन इसका अर्थ अच्छाई और दया के साथ व्यवहार करना, शक्ति, निर्मलता, स्वस्थ आत्मयोग्यता और आत्मनियंत्रण रखना है। दीनता उद्धारकर्ता के जीवन में बहुत याद से उपलब्ध गुणों में से एक था। उसने अपने स्वयं शिष्य को सिखाया था, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन में मन में दीन हूँ। अपने हृदय में दीनता के बीज के साथ पैदा होने से आशीषित है। हमें समझने की जरूरत है कि उस दिन का विकास पलक झपकते नहीं है। अध्यक्ष नोरंजसरो अपने प्रबंध के भविष्यवक्ता ने सिखाया था, परिपूर्ण होने का प्रयास करना, प्रतिदिन सुधार करना और अपने सप्ताह के कामकाजों कामों पर नजर डालना और इस हफ्ते बेहतर करना हमारा कर्तव्य है। जितना अच्छा कल किया था, आज उससे बेहतर करें। इसलिए दिन होने के लिए दिन प्रतिदिन, हफ्ते प्रति हफ्ते प्रयास करना है। हमें प्रतिदिन पहले से अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं। अध्यक्ष नो ने कहा था, हमारी अपनी छोटी गलतियों और कमजोरियां हैं, हमें उनके ऊपर अच्छी जितनी जल्दी हो सके नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों के हृदयों से इस अनुभूति को डालना चाहिए ताकि वे उसके सम्मुख परिस्थिति में उपस्थित व्यवहार कर सकें। यदि पति अपनी पत्नी के साथ एक दिन बिना झगड़े किए, बिना किसी का दिल तोड़े या बिना परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचाए रह सकता है, तो तब तक वह परिपूर्ण है। फिर उसे अगले दिन भी ऐसा ही होने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मान लो वह अगले दिन इस प्रयास में असफल होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह तीसरे दिन बेहतर होने का प्रयास ना करें। हमारे सम पर अधीरता देखते हुए प्रभु हमें वह सब देगा जिसे हम अपनी कमी और मानव कमजोरी के कारण पाने के योग्य नहीं हैं। दीन बनने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कदम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य हमसे प्रत्येक के भीतर रहता है, और क्योंकि हम दबाव से भरे संसार में रहते हैं, हमारे जीवनों में गुस्से पर नियंत्रण करना एक चुनौती बन सकता है। कुछ सेकंड के लिए विचार करें, आप कैसे बर्ताव करेंगे जब कोई आपकी इच्छा को उसी क्षण पूरा नहीं करता जब आप चाहते हैं। क्या होता है जब लोग आपके विचारों से सहमत होते हैं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह समस्या का उचित उपाय है? आपका क्या जवाब होता है जब कोई आपको नज़र करता है, आपके काम की आलोचना करता है या निर्दयी होता है क्योंकि वह बुरे मूड में है? ऐसे समय में या अन्य कठिन परिस्थितियों में हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी भावनाओं को हृदय और विनम्रता से समझना चाहिए। ये हमारे घरों के भीतर और हमारे आनंद साथी के साथ हमारे संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी पत्नी के साथ 31 वर्षों के अपने वैवाहिक जीवन के दौरान ना उसने मुझे अक्सर विनम्रता से इन बातों को स्मरण कराया जब हमने जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना किया है। तिमुथियुस की दूसरी पत्री में अन्य निर्देशों के साथ प्रेरित पौलुस कहता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फेराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और वे छूट जाएं। अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण करके शांत और विनम्र रहकर और विवाद से बचकर हम दीनता के उपहार के योग्य होना आरंभ करें। अध्यक्ष हेनरी बी आयरन ने एक बार कहा था, जब हम विश्वास के साथ अपने गुस्से पर नियंत्रण करते और अपने घमंड को वश में करते हैं तो पवित्र आत्मा अपनी स्वीकृति देती है और पवित्र आत्माएं और अनुबंध दृढ़ हो जाते हैं। दीनता को पाने का अन्य कदम विनम्र होना है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा प्रभु ने थॉमस बी मार्श को यह कहते हुए निर्देश दिया था, तुम विनम्र बनो और प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हाथ थाम कर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। मैं विश्वास करता हूँ केवल वही जो विनम्र हैं अपनी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु के जवाब को पहचानने और समझने के योग्य हैं। विनम्र व्यक्ति सीखने योग्य हैं, वे जानते हैं कि वे परमेश्वर पर कितने निर्भर हैं और उसकी इच्छा को करने के लिए तैयार रहते हैं। विनम्र व्यक्ति दीन होते हैं और उनमें दूसरों को ऐसा बनने की योग्यता भी होती है। परमेश्वर विनम्र व्यक्ति से वादा करता है कि वह उनका हाथ थामकर मार्गदर्शन करेगा। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि हम अपने जीवनों से उलझनों और दुखों को दूर रखेंगे जब हम प्रभु का हाथ थामकर चलते हैं। भाई मोसेस महालंगू का परिवर्तन 1964 में हुआ था जब उन्हें मॉर्मन की पुस्तक मिली थी। इस पुस्तक को पढ़कर वह बहुत आकर्षित हुए, लेकिन 70 के दशक के आरंभ तक उन्होंने एलडीएस गिरजा नहीं देखा था। भाई महालंगू ने एक दिन सड़क पर जाते हुए गिरजा को देखा और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता जताई। अफ्रीका में एक भवन के अंदर चले गए। उन्हें विनम्रता से बताया कि वह सभा में शामिल या बपतिस्मा नहीं ले सकते क्योंकि उस समय उस देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। भाई महालंगू ने इस निर्णय को दीनता, विनम्रता और बिना नाराजगी के स्वीकार कर लिया था, लेकिन गिरजा के विषय में अधिक जानने की इच्छा उनमें निरंतर बनी रही। उसने गिरजा के मार्गदर्शकों से ये कहा कि वह सभा की एक खिड़की खुली रहने दे ताकि वह बाहर बैठकर रविवार की सभा की सुन सके। कई साल तक भाई महालंगू का परिवार और उसके मित्र उस खिड़की के द्वारा गिरजे की सभा में निरंतर शामिल हुए थे। एक दिन 1990 में उन्हें बताया गया कि वे गिरजे में शामिल हो सकते हैं और बाद में गिरजे ने उसके क्षेत्र स्वेटो में यह शाखा संगठित की थी। यह केवल भाई महालंगू जैसे लोगों के हृदय निश्चित आहास और विश्वास के कारण संभव हो पाया था। भाई महलंगू के एक मित्र ने, जो गिरजे में उसी दौरान शामिल हुआ था, मुझे इस कहानी को बताया था। जब मैं स्वेटो स्टेक में आया था, हमारी बातचीत के अंत में उसने मुझे गले लगाया था। उस क्षण मुझे ऐसा लगा था मानो उधारकर्ता ने मुझे अपनी बाहों में लिया हो। दीनता इस भले भाई की आंखों में झलक रही थी। अच्छाई से भरे हृदय और अत्यधिक भार के साथ उसने पूछा था कि क्या मैं अध्यक्ष मॉनसन को बता सकता हूँ कि वह और अन्य बहुत से सच्चा सुसमाचार अपने जीवनों में पाकर बहुत आभारी और आशीषित हुए हैं। भाई महलंगू और उसके भाइयों के दीनता का उदाहरण सचमुच में बहुतों के जीवन में अच्छा प्रभाव डालता है। विश्वास भाइयों और बहनों, में विश्वास करता हूँ कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह दीनता का सर्वोच्च उदाहरण है। अपनी पृथ्वी की सेवकाई के अंतिम क्षणों के दौरान भी अन्य पूर्ण रूप से दोष लगाए जाने और निंदा किए जाने, कष्टपूर्ण ढंग से सलीब को गोलगत कर उठकर ले गया, उसके शत्रुओं द्वारा मजाक उड़ाया गया और अभिशप्त किया गया। बहुत से लोग से उसे मां जानते थे कि उसे चमत्कारों को दिखाया था। उसने उसका त्याग कर दिया था, उसे सलीब पर लटका दिया गया था। अत्यधिक शारीरिक पीड़ा सहते हुए प्रभु ने अपने पिता से अपने दीन और विनम्र गहराई से कहा था, हे पिता, मुझे क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। मसीह ने अत्यधिक शारीरिक और आत्मिक कष्ट सहा था ताकि हमें अपने आत्मिक चरित्र को बदलने की मौका दे। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि अपने को बदल पाना संभव है, अपनी कमजोरियों को त्याग करना संभव है। हमारे जीवनों से भरे प्रभाव को अस्वीकार करना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, दीन बनना और हमारे उद्धारकर्ता के गुणों का विकास करना संभव है। उसने हमें मार्ग दिखाया था कि उसने हमें परिपूर्ण उदाहरण दिया और हमसे प्रत्येक को जैसा कि वह वैसा बनने का आदेश दिया था, उसका अनुसरण करने के लिए वह निमंत्रण देता है। उसका अनुसरण करें कि वह उसके समान बने। इन सच्चाइयों की मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में गवाही देता हूँ। आमीन।
In the family, a proclamation.
पुरेत्य धर्म विधियां और अनुबंध हमें परमेश्वर द्वारा वादा किए गए आशीषों को पूरा करने का मार्ग दिखाते हैं, जिसे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के द्वारा संभव किया गया है। परिवार दुनिया प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता के प्रिय आत्मिक पुत्र या पुत्रियां हैं, और ऐसे ही हर के पास पवित्र स्वरूप और भाव्य है। हमें बपतिस्मे की जरूरत है। जब हम बपतिस्मों के पानी से जाते हैं, हम मसीह के नाम को अपने ऊपर लेते हैं। हमेशा उसे याद रखने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने और अंत तक उसकी सेवा करने का, कि हमारे पास उसकी आत्मा हमेशा रहे, का अनुबंध करते हैं। हमें पवित्र आत्मा की उपहार जरूरत है। उस धर्म विधि के द्वारा हम आत्मा की स्थिर संगति का आगमन करते हैं। अध्यक्ष विफॉर्ट वुड्रफ ने सिखाया था, प्रत्येक पुरुष और स्त्री जिन्होंने कभी गिरजे में प्रवेश किया हो और पापों से पश्चाताप कर डूबकर बपतिस्मा लिया हो, को प्रकटीकरण का अधिकार है, परमेश्वर की आत्मा का अधिकार है। उसके कार्य में उनकी सहायता करना, उनके बच्चों की देखभाल करने में, उनके बच्चों को सलाह देने में, और उनको जिन्हें वह संचालन करने बुलाते हैं। पवित्र आत्मा पुरुषों तक सीमित नहीं है, ना ही प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं तक। ये प्रत्येक ईमानदार पुरुष और स्त्री की है, और हर बच्चे को जो मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने योग्य है। हमें मंदिर का एंडाउमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है। एल्डर एम रसल बैलट ने कहा था, जब पुरुष और स्त्री मंदिर में जाते हैं, वे दोनों समान शक्ति से एंडाउ होते हैं, जिसकी परिभाषा पुरोहित शक्ति है। एंडाउमेंट सच में शक्ति का उपहार है। हमें मुहरबंद धर्म विधि की आवश्यकता है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। परमेश्वर की शक्ति में सबसे महान उपहार है। ये पुरोहित धर्म विधि सिर्फ एक पुरुष और एक स्त्री दोनों के द्वारा ग्रहण की जाती है। एल्डर रसल एम नेल्सन ने सिखाया था, पुरोहित अधिकार को पुनः स्थापित किया गया ताकि परिवार अनंत तक मुहरबंद हो सके। हमें अपने अनुबंधों का नवीनीकरण का मौका की आवश्यकता है। हर सप्ताह जैसे हम प्रभु बोझ लेते हैं, अंतिम दिनों में भविष्यवक्ता और प्रेरित यही सिखाते हैं कि जब हम योग्यता से प्रभु बोझ लेते हैं, हम सिर्फ हमारे बपतिस्मों के अनुबंध का ही नहीं, परंतु उन सबको जो प्रभु के साथ अनुबंध बनाए हैं। ये पुरोहित्य धर्म विद्या और अनुबंध हमें परमेश्वर द्वारा वादा किए गए आशीषों को पूरा करने का मार्ग दिखाते हैं, जिसे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के द्वारा संभव किया गया है। वह बेटे और बेटियों को परमेश्वर की शक्ति के साथ शस्त्र करते हैं, परमेश्वर की शक्ति और हमें अनंत जीवन पाने का, परमेश्वर की उपस्थिति में लौटने और उसके साथ उसके अनंत परिवार में रहने का मौका प्रदान करते हैं। मैंने हाल ही में पुरोहित्य मार्गदर्शियों के साथ चार बहनों के घरों में हॉन्डर्स में बैठे भेंट करने गए थे। इन बहनों और उनके परिवारों को पुरोहित्य कुंजियों और अधिकार की, पुरोहित्य धर्म विधियों और अनुबंधों की, और पुरोहित्य शक्ति और आशीषों की आवश्यकता थी। हम एक प्रिय बहन से, जो शादीशुदा और उसके दो सुंदर बच्चे थे, उससे मिलने गए। वह गिरजे में विश्वासी और सक्रिय थे और वह अपने बच्चों को सही का चुनाव करना सिखाती है। उसका परिवार मजबूत था, परंतु महान शक्ति का आनंद करने के लिए उन्हें अतिरिक्त पुरोहित्य आशीषों की जरूरत थी। उन्हें अपने पिता को बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करनी थी और उसके ऊपर पुरोहित्य प्रष्टीकरण की जरूरत थी। हमारी अगली मुलाकात दो अकेली बहनों का घर था, बहुत ही विश्वासी बहनें। एक बहन का बेटा मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था, दूसरी बहन कैंसर का इलाज ले रही है। निराशा और उत्साहन के समय वह उद्धारकर्ता के प्रायश्चित को याद कर विश्वास और आशा से साथ भर जाती हैं। उन दोनों को अतिरिक्त आशीषें और शक्ति जो मंदिर धर्म विधियों के द्वारा आती है की जरूरत है। हमें उन्हें उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए भावी प्राचकी तैयारी के लिए उत्साहित किया था। हमारी आखिरी मुलाकात एक बहन जिसका पति हाल ही में दुखद घटना में मर गया था के घर मुलाकात करने गए थे। एक हाल में परिवर्तित, जो समझती नहीं थी कि वह अपने स्वयं का एंडाउमेंट प्राप्त कर अपने मृत पति के साथ मुहरबंद हो सकती थी। जब हमने उसे सिखाया कि ये आशीषें उसके लिए भी उपलब्ध है, वह आशा से भर उठी थी, जानते हुए कि मंदिर धर्म विद्या और अनुबंधों के द्वारा वह अपने परिवार को एक साथ मोहर बंद कर सकती है। वह विश्वास और लगन के साथ आने वाली परेशानियों का सामना करती है। विधवा का बेटा हारूनी पुरोहित्य को ग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। उसकी नियुक्ति उसके और परिवार के लिए एक बड़ी आशीष होगी। उनके घर में पुरोहित्य धारक होगा। जैसे मैंने परिवार के साथ भेंट किया था, मुझे एल्डर डैलिन एच ओक्स का अनुभव याद आया, जब वह एक डीकन पर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने कहा था, मेरे पिता की मृत्यु जब मैं सात का था हुई थी, मैं तीन छोटे बच्चों में बड़ा था। जब मुझे एक डीकन में नियुक्त किया गया, मेरी माँ ने कहा कि वह कितनी आभारी है कि उसके घर में पुरोहित्य धारक है, परंतु माँ ने परिवार का नेतृत्व करना जारी रखा। जब मेरे पिता का निधन हुआ, मेरी माँ मेरे परिवार का संचालन करती थी। उनके पास पुरोहित्य कार्यालय नहीं था, परंतु अपनी शादी में जीने के लिए माँ ने वह अपने परिवार की बागडोर संभाल ली थी। वे अक्सर हमें याद दिलाती कि हमारे पिता हमसे क्या करवाना चाहते थे, तो हम उद्धारकर्ता के बाद को पहचान सके कि हम हमेशा परिवार में रह सके। जब मैं इन विश्वासी बहनों से हॉन्डस से मिली थी, मैं देख सकती थी कि अपने परिवारों की सुसमाचार में सक्रिय बनाए रखने में मेहनत करती थी। मैं अनुबंध के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। इन प्रत्येक तीनों घरों का हमने दौरा किया था। एक इच्छा पुरोहित्य मार्गदर्शक प्रत्येक बहन से पूछे कि उन्हें पुरोहित्य आशीष मिली है। हर वक्त जवाब मिलता है। उस दिन प्रत्येक बहन ने पुरोहित्य आशीष प्राप्त करने के लिए पूछा था। इन बहनों ने मुझे प्रेरित किया था। उन्होंने परमेश्वर और उसकी शक्ति और अधिकार के प्रति श्रद्धा दिखाई थी। मैं मार्गदर्शकों का, जिन्हें के पास पुरोहित्य कुंजियां थी, जो मेरे साथ उन बहनों के घर भेंट करने गए थे, के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। जब हम उनके घर जा रहे थे, हम सलाह कर रहे थे कि किस तरह से इन परिवारों को धर्म विधियों प्राप्त करी जा सकी, उन्हें अनुबंध
के रास्ते पर प्रगति करने और उनके घरों को मजबूती देने की जरूरत के लिए सहायता करें। उनका अस्तित्व आज एक बड़ी जरूरत पुरुष और स्त्रियों के लिए आधार सभ्यता एक दूसरे के लिए जैसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां और स्वर्ग में पिता और उसके पुरोहित्य उसकी शक्ति और अधिकार के लिए हमारी श्रद्धा है। उसी के पास हमारे लिए योजना है जब हम अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं। संसार भर के मार्गदर्शकों के प्रशिक्षण परिवार और गिरजे को पुरोहित्य द्वारा शक्ति देना हमने सिखाया है। एल्डर बालेट ने सिखाया था कि प्रत्येक बहन का जानने की आवश्यकता है कि उनके पास एक धर्माध्यक्ष एक एल्डर परिषद अध्यक्ष एक घर शिक्षक और अन्य योग्य है। जैसे बहन रोजमेरी ने जोड़ा था आशीष दो। एल्डर बैलर्ड ने भी सिखाया था हमारे स्वर्ग में पिता अपनी शक्ति के साथ उधार है। सारे पुरुष और सारी स्त्रियां इस शक्ति का प्रयोग अपने खुद जीवन में मदद करने के लिए करते हैं। सभी जिन्होंने प्रभु के साथ पवित्र अनुबंध किया है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। बेटों को परमेश्वर की बेटियों की आवश्यकता है और परमेश्वर के बेटियों को परमेश्वर के बेटों की आवश्यकता है। हमारे पास भिन्न भिन्न उपहार और भिन्न भिन्न बल पहला कुरंथियो अध्याय 12 जोर देता है कि बेटों के लिए और परमेश्वर की बेटियों के लिए जरूरत है। हमसे हर कोई अपने व्यक्तिगत भूमिका और जिम्मेदारियों प्रभु की योजना के अनुसार पूरी कर रहा है तब तक कि हम सभी का लाभ पहुंचे। परमेश्वर के बेटों क्या आप जानते हो आप कौन हैं? क्या आप जानते हो आपके पास क्या है? क्या आप पुरोहित्य को योग्यता से अभ्यास करते हैं और पुरोहित्य की आशीषें और शक्ति को प्राप्त करते हैं? क्या आप अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को गले से लगाते हैं? घर में पिता दादा बेटे भाइयों और अंकल को रूप में बल देते हैं? क्या आप स्त्रियों मातृत्व और औरतों के प्रति आदर दिखाते हो? परमेश्वर की बेटियों क्या आप जानते हो आप कौन हैं? क्या आप जानते हो आपके पास क्या है? क्या पुरोहित्य की आशीष और शक्ति लेने की योग्यता है? क्या आप उपहार प्राप्त करती हो जो आपको दिए गए हैं आभार महिमा और प्रतिष्ठा के साथ? क्या आप अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को गले से लगाती हैं घर में जैसे माँ दादी बेटियां बहनों और आंटियों के रूप में बल देती हैं? क्या आप पुरुषों पुरुषत्व और पितृत्व को आधार देती हैं बेटे और बेटियों के रूप में? क्या हमारे स्वर्गीय पिता और उसकी हमारे लिए अनंत योजना में विश्वास है? क्या हमें यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित में हमें विश्वास है? क्या हमें विश्वास है कि हमारे पास अपनी पवित्र स्वरूप और भाग्य है और हमारे इस भाग्य को पाने की और प्राप्त करने में वो सब जो कुछ जो पिता के पास है? हम पुरोहित्य धर्म विधियों की महत्वपूर्णता को समझते हैं और बनाते हैं पालन करते हैं और अनुबंधों को नवीनकरण प्रभु के साथ करते हैं। हम स्वर्गीय माता पिता के प्रिय आत्मिक बेटे और बेटियां हैं पवित्र प्रकृति और योग्यता के साथ करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया और उसके प्रायश्चित ने हमारे लिए रास्ता प्रदान किया कि हम पवित्र धर्म विधियां और अनुबंधों के द्वारा पथ प्रगति के साथ स्वर्गीय घर की ओर बढ़े। ये पुरोहित्य धर्म विधियां और अनुबंधों की पुनस्थापना पृथ्वी पर भविष्यवक्ता जोसेफ द्वारा की गई थी और अध्यक्ष मॉनसन के पास पृथ्वी पर सारी कुंजियां हैं। एल्डर डी टॉट क्रिस्टोफर ने सिखाया था अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर ने धर्म विधियों का प्रबंध के लिए पुरोहित्य अधिकार को पाया था जिसके द्वारा हम अनुबंधों में अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपने उसके पवित्र पुत्र के नाम में बंधाते हैं। परमेश्वर अपने वादों का पालन करता है जैसे आप अपने उसके साथ अनुबंधों का आदर करते हैं। इन सब बातों के लिए मैं गवाही देती हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and congregation will
और अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़ी होकर गाएगी There is sunshine in my soul today। गीत के समापन पर हम एल्डर एडवर्ड डूबी 70 के को सुनेंगे। इसके पश्चात एल्डर डेविड ए बेडनार 12 पुरोहितों के परिषद से होंगे। गायक मंडली तब गाएगी कीप द कमैंडमेंट्स।
This is the 183rd.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 183वां आर्थिक वार्षिक महासम्मेलन है. ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का
As a boy,
एक बालक के रूप में अपनी माँ के साथ मैदान में काम करते समय उसने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था. सुबह में देर से सूरज चढ़ चुका था और हम खोद रहे थे. मेरे ख्याल से काफी लंबा समय था. मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा कि हमने क्या हासिल किया था और अपनी माँ से बोले, देखो हमने यह सब क्या किया. माँ ने कुछ जवाब न दिया, सोचते हुए कि उन्होंने मुझे सुना नहीं. मैंने उसे जोर से दोहराया जो मैंने कहा था, परंतु उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया. अपने स्वर को ऊंचा करते हुए मैंने फिर से दोहराया था. आखिरकार वह मेरी ओर मुड़ी और कहा, एडवर्ड कभी पीछे मुड़कर ना देखो, आगे देखो कि मैंने अभी और क्या करना है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मे के समय हमने प्रभु से जो अनुबंध किए थे, सदैव सभी पातों में चाहे जहां कहीं कभी भी तुम हो, परमेश्वर के साक्षी के रूप में खड़े होना चाहते हो, जीवन का जीवन भर का वचन है। अध्यक्ष उड्रोफ ने कहा है का सलाह दी, जो कोई भी बपतिस्मे के पानी में प्रवेश करते हैं और पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं, वे पैरों को शिष्यता के पद पर रखते हैं और अपने उद्धारकर्ता के पद चिन्हों को ईमानदारी से अनुसरण करने को तत्पर तैयार रहते हैं। प्रभु अपने सेवकों को बुलाहटों द्वारा बुलाकर सेवा कराता है, जिसे हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जब एक को मुक्त किया जाता है और एक बुलाहट पर नियुक्त किया जाता है, हम आनंदपूर्ण उसे स्वीकार करते हैं, जैसे हमारे भविष्य बतलाने वाला जानता हो कि प्रभु की सेवा में यह नहीं कि कहां आप सेवा करते हैं परंतु कैसे करते हैं। इसलिए जब एक स्टेफ अध्यक्ष अध्यक्षता मुक्त होता है, वह प्रसन्नता पूर्वक उसे लेता है, और जब एक सेवा करने की बुलाहट का आग्रह किसी भी तरह से प्रभु द्वारा उसके सेवक को दी जाती है, उससे लाभ होता है। उससे पहले के अनुभव की छत्र या छात्र में उसे अच्छा करने के लिए थका हुआ नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह महान काम की नींव पर एक साफ दिव्य दर्शन के साथ की ऐसी परिश्रम जीवनों को आनंदता के लिए आशीषित करने पर निर्भर करता है। इसलिए छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बात होती है। हम सभी को उत्साह पूर्वक अच्छे कारणों को करने में लगे रहना है और अपनी खुद की इच्छा से बहुत काम करना है और अधिक योग्यता को बढ़ाना है। एल्डर जेफरी आर हेलन 12 प्रेतों के परिषद के सलाह देते हैं, अतीत से सीखा जाना है परंतु उसमें जिया नहीं जाता। हम पीछे अधिकार से दमकते हुए अनुभवों के चिंगारियों को देखें, बहुत राख को नहीं, और जब हम वो सीखें तो हमें जिसे रखने की जरूरत होती है और हम अपने साथ अच्छा ही लेते हैं जिनका हम अनुभव कर चुके हैं। हम देखते हैं और विश्वास हमेशा भविष्य की ओर संकेत करता है। जबकि मेरी मां का आगे देखने का सबक मैदान पर पड़ी खिस्ती घास पात की ओर निर्देश करता था, यह पूर्व संतों का जिससे वे गुजरे थे की तुलना में कम था। एल्डर जॉफर बी वर्थलिन ने इस अनुभव का वर्णन बहुत अच्छे से किया था। 1846 में मैं 10,000 लोगों ने उन्नतिशील नवू शहर को छोड़ा था जो मिसिसिपी नदी के तट पर बना हुआ था। भविष्यवाणी करते मार्गदर्शकों में विश्वास के साथ वे पूर्व गिरजा के सदस्यों ने सुंदर शहर को छोड़ा और अमेरिका की सरहद के वीरान भूमि में जा चुके फंसे थे। वे सच में नहीं जानते थे कि उन्हें निश्चित रूप से किधर कितने मीलों और आगे जाना है, यात्रा में कितना समय और लगेगा, या कि उनके लिए भविष्य में आगे क्या रखा है, परंतु वे जानते थे प्रभु और उनके उसके सेवकों द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। वे जानते थे कि आगे कैसे देखना और भविष्य विश्वास करना था। 10.5 सालों से ज्यादा उनमें से कुछ सदस्य जब प्रकटीकरण प्राप्त हुआ था उपस्थित थे। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, आशीषित है वे जो कोई आज्ञाओं का पालन करते हैं, चाहे जीवन में या मृत्यु में, और जो विपत्तियों में विश्वास करते रहते हैं। स्वर्ग के राज्य में उनका इनाम बहुत महान होगा। आप उनको अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। वर्तमान समय के लिए तुम्हारे परमेश्वर ने उन बातों को विचार कर नमूना बनाया जो कि उसके बाद आया करता है और जो कि बहुत मुसीबतों के बाद महिमा आती है। हम आगे देखकर और विश्वास कर सकते हैं। हम भी अपने प्रभु के निमंत्रण को गले से लगा सकते हैं, जो हाथों को फैलाए हुए हमें आमंत्रित करता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्वास तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, उनके सलाहकार और 12 प्रेरितों के परिषद ने उद्धार के काम में भाग लेने के लिए हम सभी को निमंत्रण दिया है। नए परिवर्तित युवा युवा लोगों जिन्होंने अपने कार्यकाल से अवकाश लिया हो और मेरे समय के प्रचारकों को उद्धार के काम में सामान्यतः से युवा को शीघ्रता से उठाने की जरूरत है. अध्यक्ष उन्होंने अनुभव से कहा था, एक लकड़ी का हथौड़ी का भार सीमेंट के ब्लॉक के साथ था, 4535 किलो. बैलों को हथौड़े की वस्तु की को 3 फीट हिलाना था. 91 मैंने ध्यान दिया कि एक बहुत बड़ी लगाम नीचे सफेद पशु पिछले समय का बड़ा सा बैल अच्छे से मैल खाता हुआ था. प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, टीम एक के बाद एक निकल रही थी. एक बड़ा नीला बैल जिसे अभी तक वहां रखा नहीं गया था, एक छोटा बिना वर्णित किया हुआ पशुओं का जोड़ा माप में तेल ना खाता हुआ ने हथौड़े को 3 बार हिलाया था. परंतु छोटे बैलों की टीम ने अच्छे से मिलकर समयाति से किया था. उन्होंने जुआ को मिलकर मारा था. दोनों पशुओं ने आगे बढ़कर एक ही समय में मारा था और भार को निकाल दिया था. जैसे हम आगे देखते हैं और विश्वास करते हैं, हमें उद्धार के काम के लिए ऐसी ही टीम की जरूरत है जैसे हम दूसरों को मसीह के पास आने का निमंत्रण देते हैं. हमारी व्यक्तिगत अध्यक्षता हमें अध्यक्ष ऑड्रफ की सलाह पर अनुसरण करने की आवश्यकता है. एक साथ खड़े हो और ऊपर उठे जहां हम खड़े हैं. हम अपनी पूरी संभावना को थपथपाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एल टॉम पेरी 12 परिवर्तन के परिषद से ने देखा था. जैसे मैं सारे गिरजों की यात्रा करता हूं, मैं सकारात्मक बातें जो कि सामने आ रही है देखकर आश्चर्यचकित होता हूं. अभी तक मैं महसूस नहीं कर पाया हूं जैसे हम लोग वास्तविकता में संभवता से ऊपर जी रहे हैं. मेरा मानना है कि हम हमेशा एक साथ काम नहीं करेंगे. हम अभी भी अपनी व्यक्तिगत आधार और सफलता की प्रशंसा में रुचि रखते हैं और परमेश्वर के राज्य को बनाने के सामान्य उद्देश्य के प्रति बहुत कम रुचि रखते हैं. मनुष्य को अनंत जीवन के लिए अमरत्व को प्राप्त करना है. हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने शुरुआत से लेकर अंत तक देखा है, वह गतसमनी और गुलगुलता की यात्रा के मार्ग में को जानता है. जो कोई अपना हाथ पर हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. प्रभु के निगाह में यह पर्याप्त नहीं है कि हम या जहां कहीं भी हैं जो हमारे परंतु अधिक कहीं भी जाकर करने की इच्छा रखते हैं. हमको मार्गदर्शित नियम जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा सिखाए गए थे. हमारे धर्म का मौलिक नियम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की गवाही से यीशु मसीह पर ध्यान करते हुए कि वह मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया और सभी अन्य बातें जो कि हमारे धर्म के लिए उपयुक्त है सिर्फ उससे ही जोड़ी हुई है. मैं साक्षी देता हूं कि जैसे हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उदाहरण का अनुकरण करते हैं और अपने हाथों को उठाकर हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन का समर्थन करते हैं, हमें शांति, आराम, आनंद मिलेगा और हम इन दिनों के आनंद दिन में भूमि का अच्छा फल खा सकेंगे. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
This morning I want to describe two important lessons.
आत्मिक और सांसारिक आशीषें हमारे जीवन में आती हैं जब हम दशमांश नियम का पालन करते हैं. दशमांश के विषय में दो महत्वपूर्ण सबक जो मैंने सीखे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं. पहला सबक उन आशीषों पर है जो व्यक्तियों और परिवारों के विश्वासपूर्ण रूप से इस आदेश का पालन करने से मिलती है. मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक को इस सिद्धांतों की सच्चाई की पुष्टि करेगी जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। सबक एक, महत्वपूर्ण लेकिन आर्थिक अप्रत्यक्ष आशीषें। बहन बेडनर की माँ एक विश्वासी स्त्री और प्रेरित गृहिणी है। अपने विवाह के शुरू के दिनों में से ही उन्होंने पारिवारिक की कसम सावधानी से आर्थिक हिसाब किताब रखा है। जो जानकारी उन्होंने सालों से एकत्रित की है वह व्यापक और शिक्षा प्रद है। जब बहन बेडनर युवती थी, उनकी मां ने उन खातों के आंकड़ों का उपयोग दूरदर्शितापूर्ण रहन सहन और घर प्रबंध के मूलभूत नियमों पर जोर डालने के लिए में किया था। एक दिन जब वे मिलकर विभिन्न प्रकार के खर्चों पर चर्चा कर रहे थे, उसकी मां ने एक दिलचस्प बात पर ध्यान दिया था। डॉक्टर और दवाइयों का खर्च अनुमान से बहुत अधिक था, बहुत कम था। उन्होंने इस बात को यीशु मसीह के सुसमार के साथ जोड़ा और अपनी बेटी को एक प्रभावशाली सच्चाई बताई। जब हम दशमांश के नियम का पालन करते हैं तो हमें अक्सर महत्वपूर्ण लेकिन अप्रत्यक्ष आशीष प्राप्त होती हैं, जिनकी आशा नहीं होती आसानी से अनदेखी कर दी जाती हैं। परिवार की आय में कोई अचानक या अप्रत्यक्ष वृद्धि नहीं हुई थी। असल में प्रेमी स्वर्गीय पिता ने साधारण तरीके से सरल आशीषें दी थी। बहन बेडनर ने अपनी माँ के इस महत्वपूर्ण सबक को हमेशा याद रखा है कि हमें आकाश के झरोकों से मदद मिलती है, जैसे मलाकी द्वारा पुराने नियम में वादा किया गया है। मलाकी 3:10 में देखें। अक्सर हम दशमांश के नियम को सीखते हैं तो हम अचानक और आसानी से नजर आने वाली उन आशीषों पर जोर देते हैं जो हमें मिलती हैं, और सचमुच में ऐसा आशीषें होती हैं। फिर भी कुछ आशीषें जो इस आदेश का पालन करने से मिलती हैं अलग तरीके की होती हैं। वे महत्वपूर्ण हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। ऐसी आशीषों को तभी पहचाना जा सकता है जब हम आत्मिक रूप से चौकस और सतर्क रहें। मलाकी द्वारा प्रयोग किया शब्द आकाश के झरोके द्वारा बहुत शिक्षाप्रद है। झरोके प्रदर्शन को मकान के अंदर आने देते हैं। इसी प्रकार हम जब दशमांश के नियम का पालन करते हैं तो आत्मिक प्रकाश और कृपा आकाश के झरोके से हमारे जीवन में बरसने लगती है। उदाहरण के लिए अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण आशीष के रूप में हमें कृतज्ञ का एक ऐसा आत्मिक उपहार मिलता है जिससे जो कुछ हमारे पास है उसका आभार व्यक्त करने के लिए समक्ष होकर आभारी इच्छा को समिति करते हैं। हमें उचित रोजगार को पाने के लिए सहायता और प्रार्थना की जरूरत होती है। हमें विश्वासों की आंखों और कानों की जो हमें ऐसे रोजगार के अवसरों को पहचानने के लिए आत्मिक से समक्ष करते हैं जिनसे ये अन्य लोगों नहीं देख पाते हैं, या प्राश्रम से और लंबे समय तक किसी पद की खोज करने की जो शायद अन्य लोग नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते के लिए व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प की आशीष की जरूरत होती है। हम रोजगार की चाहत और इसकी आशा करते हैं लेकिन वह आशीष और आकाश के झरोकों से आती है जो हो सकता है उससे उसमें कार्य करने और हमारी परिस्थितियों को बदलने की अधिक क्षमता हो बजाय उसके जो किसी व्यक्ति या किसी अन्य बात से बदल जा सकता है।
In us an increased spiritual and temporal capacity to do more with less, a keener ability to prioritize and simplify, and an enhanced ability to take proper care of the material possessions we already have acquired. We might want and expect
उसका उचित ढंग से उपयोग करने की बड़ी हुई समझ पर ध्यान देने के विश्वास और आंखों के कानों की जरूरत होती है। हम बहुत अच्छे वेतन की आशा करते हैं लेकिन जो आशीष प्रकाश के झरोकों से आती हैं, हो सकता है उसमें हमारी परिस्थिति को बदलने की अधिक क्षमता हो। मार्मन की पुस्तक में सैनिकों ने दृढ़ता से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर उनकी शक्ति देगा और उनको शत्रुओं से उन्हें बचाएगा। यह दिलचस्प है, इन प्रार्थनाओं के जवाब में ना तो उन्हें हथियारों में वृद्धि हुई ना ही सैनिकों में। इसके बजाय परमेश्वर ने इन विश्वासी सैनिकों को आश्वासन दिया कि वह उन्हें बचाएगा, उनकी आत्मा को शांति देगा और उसने अपने बचाव के विश्वास की आशा को बढ़ाएगा। इस प्रकार हिलमन के बेटों ने साहस किया, विजय पाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़कर लहमनाप का सामना किया। युद्ध में सैनिकों को हो सकता है आश्वासन, शांति, विश्वास और आशा शुरू में आशीष ना लगी हो, लेकिन ये आशीषें निश्चित रूप से वही थी जिसकी इन साहसी सैनिकों को आगे बढ़ने और शारीरिक और आत्मिक रूप से जीतने के लिए जरूरत थी। हो सकता है कभी हम परमेश्वर से सफलता मांगे और वह हमें शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति दे, हम धन संपत्ति मांगे और हमें बड़ा हुआ दृष्टिकोण और धैर्य मिले, या हम विकास की मांग करें और कृपा का उपहार मिले। वह हमें दृढ़ता और आत्मविश्वास से दे सकता है जब हम योग्य लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते हैं और जब हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परेशानियों से राहत की याचना करते हैं, तो वह हमें संकल्प और कोमलता को बढ़ाता है। मैं वादा करता हूं कि जब आप और मैं दशमांश के नियम का पालन करते हैं तो सचमुच में आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और आत्मिक और सांसारिक आशीषों की अस्पर वर्षा होगी। हम प्रभु की घोषणा को भी याद करते हैं क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सही है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मैं तुम्हारे सोच विचारों से आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मैं प्रमाणित करता हूं कि जब हम आत्मिक रूप से चौकस और सतर्क रहते हैं तो हम अधिक स्पष्ट रूप से देखने और आंखों से आशीषित होंगे और हृदयों से जो उसके मांगों और विचारों और हमारे जीवन की आशीष उनकी आशीषों के स्पर्श और महत्वपूर्ण भेद को अच्छी समझ पाएंगे। सबक दो, 12 प्रेरितों के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए चुने जाने से पहले मैंने पवित्र दशमांश कोष को की देखभाल और व्यय करने के लिए नियुक्त परिषद के विषय में सिद्धांत और अनुबंध में कई बार पढ़ा था। जब दिसंबर 2004 में मैंने पहली बार इस परिषद की सभा में भाग लेने के लिए तैयारी की तो मैंने उत्सुकता से इस अद्वितीय सीखने के अवसर की प्रतीक्षा की थी। मुझे अभी भी वे बातें याद हैं जो मैंने उस परिषद के में अनुभव और महसूस की थी। मैंने व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए और उनके गिरजे के लिए प्रभु की आर्थिक व्यवस्था के प्रति अधिक प्रशंसा और श्रद्धा प्राप्त की। दो कथनों ने धन संबंधी प्रशासन के आधार प्रदान करते हैं। खंड 119 सरलता से बताता है कि सभी सदस्य अपनी वार्षिक आय का 10वां भाग दें और हमें यह हमेशा उनके लिए स्थायी आदेश रहेगा, प्रभु कहता है। फिर दशमांश के अधिकृत व्यय के संबंध में प्रभु कहता है, इस व्यय मेरे गिरजे की प्रथम अध्यक्षता और धर्मक्ष और उसकी परिषद और मेरे उच्च परिषद को मिलकर बनी परिषद और उन पर मेरी स्वयं की वाणी के द्वारा होगा, प्रभु कहता है। इन प्रकटीकरण में धर्माध्यक्ष और उसकी परिषद और मेरी उच्च परिषद वर्तमान के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष और 12 प्रेरितों की परिषद है। इन पवित्र कोषों का उपयोग तेजी से बढ़ रहे गिरजे के लोगों और परिवार को विभिन्न कार्यों द्वारा आशीषित करने के लिए किया जाता है। जैसे मंदिर और प्रार्थना घर बनाना और इनका रख रखाव करना, प्रचार करना, उनका खर्च उठाना, धर्मशास्त्रों का अनुवाद और छपाई करना, परिवार स्थायी कार्य खोज की मदद करना, स्कूल और धर्म शिक्षा के अनुदान देना और गिरजे के अन्य उद्देश्य को पूरा करना, जिनका प्रभु अपने नियुक्त सेवकों को निर्देश देता है। मुझे विश्वास में कई विश्वभर में कई संगठनों और सरकारों में प्रयोग की जाने वाली जटिल आर्थिक दिशा निर्देशों और प्रदर्शनिक प्रक्रियाओं की तुलना में इन दोनों प्रतिकरणों की स्पष्टता और पर अचंभा होता है। मेरे लिए इसका सीधा जवाब है, यह प्रभु का कार्य है और वह अपना कार्य करने में सक्षम है और उद्धारकर्ता अपने सेवकों को प्रेरणा और निर्देश देता है जब वे उसके कार्य को निर्देश के अनुसार करते हैं। उस पहली परिषद सभा में मैं उन सिद्धांतों के सरलता से प्रभावित था जिसने हमारे विचार विमर्श और निर्णयों का निर्देशन किया था। गिरजे के आर्थिक संचालन में दो मूलभूत और निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। पहला, गिरजा अपने सिद्धांतों के भीतर रहता है और जितना इन्हें प्राप्त रहता है उसके अधिक खर्च नहीं करता। दूसरा, वार्षिक आय का एक हिस्सा आस्मिक व्यय और अनपेक्षित जरूरतों के लिए अलग से सुरक्षित रखा जाता है। दशकों से गिरजे ने अपने सदस्यों को अतिरिक्त भोजन, ईंधन और धन को बुरे समय के लिए बचाकर रखना सिखाया है। गिरजा एक संस्था के रूप में सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो इसके सदस्यों को बार बार सिखाए जाते हैं। जैसे वह सभा आगे बढ़ी, मेरी इच्छा हुई कि गिरजे के सदस्य भी उसी सरलता, स्पष्टता, सुव्यवस्था, उदारता और शक्ति का पालन करें जिस प्रकार प्रभु उसके गिरजे के संसारिक कामकाज का संचालन स्वयं करता है। मैं अब दशमांश प्रबंध और की परिषद में कई सालों से भला भाग ले रहा हूँ। प्रभु के आदर्श के प्रति मेरी कृतज्ञता और धर्म श्रद्धा हर साल बढ़ती जा रही है और उसके सबक मैंने सीखे हैं। मेरा हृदय इस गिरजे के प्रत्येक राष्ट्र, जाति, भाषा और समाज के उन विश्वासी और आज्ञाकारी सदस्यों के प्रति प्रेम और प्रशासन में भर जाता है। जब मैं संसार की यात्रा करता हूँ, मुझे आपकी आशा और सपनों, आपके रहन सहन की विभिन्न दशा और परिस्थितियों और उनके संघर्षों के बारे में पता चलता है। मेरे गिरजे की सभाओं के आपके भाग लिया है और आपके घर गया हूँ। आपका विश्वास मेरे विश्वास को मजबूत करता है। आपका समर्पण मुझे और अधिक समर्पित बनाता है और आपकी भलाई और दशमांश के प्रति आपकी आज्ञाकारी मुझे बेहतर व्यक्ति, पति, पिता और गिरजे का मार्गदर्शन बनाने के लिए प्रेरित करती है। हर बार जब भी मैं दशमांश प्रसिद्धन के परिषद में भाग लेता हूं, तो आपको याद करता हूं और आपके विषय को सोचता हूं, आपके अनुबंधों का आदर करने के, आपके गुणों के विश्वसनीयता के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के पुनर्स्थापित गिरजे के सदस्यों के पवित्र बेटों की देखभाल उचित से करने की महान जिम्मेदारी महसूस करते हैं। हम विधवा की दुमड़ी और प्रति संवेदनशील हैं और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमंडियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर में भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब से धन की बढ़ती से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था उसे समर्पित कर दिया है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव से जानता हूँ कि दशमांश प्रबंध की परिषद विधवा की दमंडी का ध्यान रखने में सतर्क है। इस पवित्र प्रबंधन मैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट मॉन्सन और उनके सलाहकारों के प्रभावकारी मार्गदर्शन की प्रशंसा करता हूं।
Sustain his ordained servants in fulfilling the duty to represent him. The honest payment
एक ईमानदार और एक गवाही, ईमानदार से दशमा देना एक कर्तव्य से अधिक है। यह व्यक्तिगत संतुष्टि की प्रतिज्ञा का महत्वपूर्ण कदम है। आप में से जो भी दशमांश के नियम का पालन नहीं कर रहे, मैं आपको इस पर विचार करने और पश्चाताप करने का निमंत्रण देता हूं। मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रभु के इस नियम के प्रति आपकी आज्ञाकारी के द्वारा आकाश के झरोके आपके लिए खुल जाएंगे। कृपया पश्चाताप करने में देर ना करें। मैं प्रमाणित करता हूँ आत्मिक और सांसारिक आशीषें हमारे जीवन में आती हैं जब हम दशमांश का नियम का पालन करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि ये आशीषें अक्सर महत्वपूर्ण लेकिन अप्रत्यक्ष होती हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उसके गिरजे में संसारिक कामकाज करने के में प्रभु के तरीके की सरलता इतनी स्पष्ट है कि यह निजी और पारिवारिक के तौर हमारा मार्गदर्शन करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में से प्रत्येक इस महत्वपूर्ण सबकों को सीखें और इनका लाभ प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
We express gratitude to the tabernacle.
हम गायक मंडली का मोहक संगीत के लिए और उन सभी वर्ताकारों का कृतज्ञ के साथ भारी हैं जो उन्होंने इस सुबह हमें प्रस्तुत किए हैं. इन अधिवेशन के हमारे अंतिम प्रवक्ता डीटर एफ उड्रॉफ प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार हैं. उनकी टिप्पणी के बाद गायक मंडली गाएगी कम ई थैंकफुल पीपल कम. समापन प्रार्थना भाई मैथ्यू जो रिचर्ड रविवार विद्यालय के जनरल अध्यक्ष के द्वितीय सलाहकार द्वारा दी जाएगी.
Once there was a man who dreamed that he was in a great hall.
एक बार एक आदमी ने सपना देखा था कि एक बड़े से हॉल में जहां पर संसार के सारे धर्म के एकत्रित हैं. उसने एहसास किया कि हर धर्म में कुछ अधिक है जो कि इच्छानुसार और योग्य लगता है. वह एक सुंदर दंपति से मिला जो अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पूछा, आपको अपने सदस्यों के लिए क्या चाहिए? हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जवाब दिया, परंतु प्रभु चाहता है कि हम सभी अपर्ण करें. दंपति गिरजे की बुलाहट घर और भेंट करने वाले शिक्षक पूरे समय के प्रचारक साप्ताहिक घर पारिवारिक संध्या मंदिर कार्य वेलफेयर और ह्यूमैनिटेरियन सेवा और सीखने के कार्य के बारे में समझते चले गए. क्या आप सभी कामों के लिए अपने लोगों का भुगतान करते हैं? व्यक्ति ने पूछा. अरे नहीं, दंपति ने समझाया था, वे अपना समय स्वतंत्रता से देते हैं. और भी दंपति ने बोलना जारी रखा, प्रत्येक 6 महीने में हमारे गिरजे के सदस्य सप्ताह के अंत में 10 घंटों की जनरल सम्मेलन को देखते या भाग लेते हैं. 10 घंटे लोग वार्ता देते रहते हैं? व्यक्ति अचंभित हुआ. आपके साप्ताहिक गिरजाघर सभा का क्या होता है? कितनी लंबी होती है? प्रत्येक रविवार 3 घंटे. अरे व्यक्ति ने कहा, क्या आपके गिरजे के सदस्य वे सब करते हैं जो आप कहते हैं? यह भी और भी. हमने अब तक परिवार इतिहास, युवा कैंप, डिवोशनल, धर्मशास्त्र अध्ययन, मार्गदर्शकों की परीक्षण, युवा गतिविधियां, तड़के सुबह के सेमिनरी, इमारतों की देखभाल और अवश्य ही प्रभु के स्वार्थ नियम, उपवास, गरीबों की सहायता के लिए और दशवांश के बारे में अभी तक बताया नहीं गया. व्यक्ति ने कहा, मैं परेशान हूं. क्यों कोई ऐसा गिरजा में जाना पसंद करेगा? दंपति मुस्कुराए और बोले, हमने सोचा आप कभी नहीं पूछेंगे. क्यों कोई ऐसा गिरजे से जुड़ेगा? इस समय पूरे संसार भर में कई गिरजे विशेष रूप से सदस्यों के कम होने का अनुभव कर रहे हैं. अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर संसार भर में तेजी से उभरता हुआ गिरजाघर है. इसके कई कारण हैं, परंतु मैं कुछ बताना चाहता हूं. पहला, इस गिरजे की हमारे दिन में पुनर्स्थापना यीशु मसीह के स्वयं के द्वारा की गई थी. यहाँ पर आप उसके नाम के अधिकार से नाम करना, पापों से मुक्ति के लिए बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा के उपहार की पुष्टि और पृथ्वी पर और स्वर्ग में मोहर बंद होना पाएंगे. जो इस गिरजे से जुड़ते हैं वे उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं. वे ज्ञान में आनंद लेते हैं कि परमेश्वर दोबारा से मानव जाति से बात करने लगा है. जब वे पवित्र पौरोहित्य धर्म विधियां प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से अनुबंध बनाते हैं, वे उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं. जब वे पवित्र मंदिर में प्रवेश करते हैं, वे अपने आप को उसकी उपस्थिति में पाने का अनुभव करते हैं. जब वे पवित्र धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसके भविष्यवक्ता की शिक्षा पर जीते हैं, वे उद्धारकर्ता के और नजदीक हो जाते हैं जिससे वे प्रेम करते हैं. दूसरा कारण, गिरजा अच्छा करने के मौके प्रदान करता है. परमेश्वर में विश्वास प्रश्नीय है, परंतु बहुत से लोग और अधिक करना चाहते हैं. प्राय प्रेरणा भरे संदेशों को सुनना या घर को ऊपर बनाने का सपना देखने से ज्यादा। वे अपने विश्वास को काम में लाना चाहते हैं। वे अपने असतीनों में ऊपर चढ़कर और ऐसे महान कारणों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे संसार भर की कलीसिया में हमारे पास भुगतान करने के कोई स्थानीय पादरी नहीं होते हैं। हमारे सदस्य की सेवा करने के कामों को खुद ही करते हैं। उन्हें प्रेरणा के द्वारा बुलाया जाता है। कभी कभी हम स्वयं ही काम करते हैं, कभी कभी हम स्वयं सेवक होते हैं। हम काम को बोझ की तरह नहीं लेते हैं, परंतु अनुबंध को पूरा करने के हम खुशी से परमेश्वर और उसके बच्चों की सेवा करने के मौके पाते हैं। एक तीसरा कारण क्यों लोग गिरजे से जुड़ते हैं, क्योंकि शिष्यता के पथ पर चलने से बहुत मूल्य आशीषें मिलती हैं। हम बपतिस्मे के रूप में शिष्यता की अपनी यात्रा की शुरुआत का बिंदु देखते हैं। हमारा रोज यीशु मसीह के साथ चलना शांति और जीवन के उद्देश्य की ओर और गहन खुशी और संसार में अनंत उद्धार के आने की ओर ले जाता है। जो कोई इस पद पर विश्वासी होकर अनुसरण करते हैं, कई कठिनाइयों, दुखों और जीवन में पछतावे से दूर रहते हैं। आत्मा से निर्बल और हृदय से ईमानदार रहने से यहाँ पर ज्ञान का बड़ा खजान प्राप्त होता है। जो कोई पीड़ित या दुखित हो को चंगाई मिलेगी यहाँ पर। जो कोई पाप को बोझ से भरे हैं को समाधान, आजादी और आराम मिलेगा। सच्चाई के लिए खोज कई हजारों लोगों को अंतिम दिनों के संतों को यीशु मसीह के गिरजाघर की ओर ले आती है। यहाँ तक कि यहाँ कई हैं कभी जो इस गिरजे से प्रेम करते थे को छोड़कर चले जाते हैं। किसी ने शायद पूछा, अगर सुषमाचार इतना अद्भुत है तो क्यों कोई छोड़कर चला जाता है? कभी कभी हम सोचते हैं ये नाराजगी या सुस्ती या पाप के कारण से होगा। वास्तविकता में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ तक इसका कोई एक कारण नहीं है जो कि विभिन्न परिस्थितियों में लागू होता हो। हमारे कुछ प्रिय सदस्य सालों साल प्रश्न के साथ संघर्ष करते हैं, चाहे वे अपने आप के गिरजे से अलग रहे। इस गिरजे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत मजबूत माना जाता है, जिसको एक युवक द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था, जिसने प्रश्न पूछा था और उत्तरों को ढूंढा था। हम उनका जो सच्चाई को ईमानदारी से खोजते हैं, ये हमारा हृदयों को तोड़ता है। जब उनकी यात्रा उन्हें गिरजे से दूर ले जाती है, हम प्रेम करते हैं और सच्चाई जिससे हम पाते हैं, परंतु हम उनकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना उनके अपने अंतरात्मा के निर्देश से करने का आदर करते हैं, वैसे ही जैसा हम अपने खुद के लिए करते हैं। कुछ लोग चीजों के बारे में अनुत्तरित प्रश्नों के साथ संघर्ष करते हैं कि यह होना ही था या अतीत में कहा गया था। हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि लगभग गिरजा इतिहास के 200 साल में बाधा रहित प्रेरणा, कभी कभी प्रश्न होते हैं क्योंकि हमारे पास आसानी से दी जाने वाली सारी जानकारी नहीं होती है और हमें थोड़े थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। जब पूरा सच आखिरकार जान लिया जाएगा, बातें पहले जिनका कोई मतलब हमारे लिए नहीं होता था, हमारी तसल्ली के लिए सुलझाई जाएगी। कभी कभी अलग अलग राय होती हैं वास्तविक कारणों के से हटकर। कुछ के लिए प्रश्न जो कि शंका उत्पन्न करते हैं, ध्यान पूर्वक जांच के बाद दूसरों में विश्वास बनाते हैं। और स्पष्टता पूर्ण वो भी समय था जब सदस्य या मार्गदर्शक गिरजाघर में आसानी से गलतियां करते थे। यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं जो कही या कराई जाती हैं जो हमारे मूल्यों, नियमों या सिद्धांतों के साथ मेल नहीं खाते हैं। मेरा मानना है कि गिरजा सिर्फ तभी संपूर्ण होता है अगर इसे संपूर्ण लोगों द्वारा चलाया जाए। परमेश्वर संपूर्ण है और उसके सिद्धांत शुद्ध हैं, परंतु वह हमारे द्वारा ही काम करता है। उसके अपूर्ण बच्चे और अपूर्ण लोग गलतियां करते हैं। मॉर्मन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और अब यदि कोई त्रुटि होगी वह किसी मनुष्य की ही होगी। इसलिए परमेश्वर की चीजों की निंदा ना करें कि तुम मसीह के न्याय की कुर्सी के समान दोष राहित पाए जाओ। यही रास्ता है, यह हमेशा से था और संपूर्ण दिन तक रहेगा जब मसीह स्वयं व्यक्तिगत तरह से पृथ्वी पर शासन करेगा। यह दुर्भाग्यवश है कि कुछ लड़खड़ाते हैं क्योंकि इंसान की गलतियां होती हैं, परंतु इसके बावजूद अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर और पुनर्स्थापित अनंतता की सच्चाई पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में और एक जो परिषद के प्रथम दिखाई देते हैं और इस गिरजे के लिए काम करते हैं, मैं गंभीरता से साक्षी देता हूं, कोई भी विशेष परिणाम इस गिरजे को प्रभावित नहीं करता है या इसके सदस्य कभी भी बिना उत्सुकता से प्रेरित होकर मार्गदर्शन से अपने अनंत पिता की प्रशंसा को ढूंढते हैं। यह है अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर। परमेश्वर अपने गिरजे को उसके आकांक्षा के अनुमति से ना ही उसके पवित्र भाग्य को पूरा करने से, उनके लिए जिन्होंने गिरजे से खुद को अलग लिया है, मैं कहता हूं मेरे प्रिय दोस्तों, आपके लिए अभी यहां पर एक जगह है। आए और अपने हुनर को जोड़ें उपहारों से और हमारी ऊंचाई से। परिणाम स्वरूप हम सभी और बेहतर होंगे। शायद कोई पूछे, लेकिन मेरे शंका का क्या होगा? ये यहाँ प्रश्न होना स्वाभाविक है। फल से परिपूर्ण ईमानदारी की जानकारी अक्सर फूट निकलती और समझदारी के बड़े बतूल के पेड़ में पलती बढ़ती है। यहाँ पर कुछ गिरजे के सदस्य हैं जो एक समय या दूसरे में गंभीर संवेदनशील प्रश्नों के साथ कड़ा संघर्ष नहीं करते हैं। विश्वास सभी बातों की गिरजे का एक उद्देश्य है, विश्वास के बीज को पोषण और ध्यानपूर्वक बढ़ना। विश्वास सभी बातों की आशा है जो दिखाई नहीं देती परंतु जो सत्य है। इसलिए कृपया से पहले आप अपने शक पर शक करें, अपने विश्वास पर नहीं। हमें कभी भी शक के कैद में हमें रखने की और हमें पवित्र प्रेम से, शांति और उपहारों से जो कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आता है, से अलग रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। किसी ने कहा, मैं गिरजे के अंदर आप लोगों के साथ मेल नहीं खाता हूं। यदि आप अपने हृदयों ने झक सकते हैं, आप पाएंगे आप वहां अच्छे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप रहन सहन या पालन पोषण भिन्न हो सकता है उन कई अंतिम दिनों के संतों से जिन्हें आप देखते हैं, परंतु ये आशीष हो सकती है। भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों, हमें आपके अद्भुत हुनर और दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विभिन्न व्यक्ति और संसार भर के लोग इस गिरजे की शक्ति हैं। किसी ने कहा, मैं नहीं समझता मैं आपके स्तर तक जी सकूंगा। और भी कई कारण हैं आने के। गिरजे को अपूर्ण संघर्ष करने वाले और थके हुए के पोषण के लिए बनाया गया है। ये उन सभी लोगों से भरा हुआ है जो आज्ञाओं का पालन अपने सारे हृदय से करने की इच्छा करते हैं, यहाँ तक कि वे इसमें पूर्ण हैं कि नहीं। किसी ने कहा, मैं आपके गिरजे में एक सदस्य को जानता हूं जो ठोंगी है, मैं कतई गिरजे से नहीं जुड़ूंगा। यदि आप ठोंगी की परिभाषा करें जैसे कोई जो पूर्णता से जीने में असमर्थ हो जिस पर वह भरोसा करता है, तब हम सभी ठोंगी हैं। हम में से कोई भी मसीह की तरह नहीं है जैसे हम जानते हैं और जानना चाहिए। हमें गंभीरता से इच्छा करनी है, हमें गलतियों और पाप करने की इच्छा से ऊपर उठना है और यीशु मसीह के प्रायश्चित की मदद के साथ और अच्छा बनाना है। यदि यही आपकी इच्छाएं हैं, आपकी परिस्थितियों के बावजूद आपका व्यक्तिगत इतिहास या आपकी गवाही की शक्ति यहाँ गिरजे में आपके लिए एक कमरा है। आओ हमारे साथ जुड़ो। हमारे मानव अपूर्णता के बावजूद मुझे यकीन है कि आप इस गिरजे में सदस्यों के मध्य कुछ बेहतरीन आत्माओं को पाएंगे जिसे यह इस संसार देता है। यीशु मसीह का गिरजाघर अच्छे और ध्यान रखने वाले ईमानदार और मेहनती की ओर आकर्षित करता है। यदि आप संपूर्ण लोगों को यहाँ पाने की इच्छा करते हैं, आप निराशा होंगे। परंतु यदि आप मसीह का शुद्धता सिद्धांत और को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के वचन जो कि जख्मी आत्मा को की चंगाई और पवित्र आत्मा के पवित्र प्रभाव को, तो आप इसे यहाँ पाएंगे। इस युग में घटता विश्वास, इस युग में जहाँ कोई कई सारे स्वर से दूर होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो अपने उद्धारकर्ता के पास परमेश्वर और अनुसरण करने वालों की सेवा करके जैसे आप करते हैं को पाएंगे। आओ हमारे साथ जुड़ो। मैं उद्धारकर्ता के जीवन के समय को याद करता हूँ जब बहुत से उसे छोड़कर चले गए थे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों से पूछा था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पत्रस ने उसका उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। यहाँ समय है हमारे पास भी सामान्य प्रश्न उत्तर देने के लिए होते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? या हम भी पत्रस के समान अनंत जीवन की बातें को क्षमता से पकड़ के रखना है। यदि आप सच्चाई को खोजते हैं और विश्वास के काम को परिवर्तित करते हैं, यदि हम उसकी चीजों को रखने के स्थान को ढूंढते हैं, आओ हमारे से जुड़े। यदि आपने एक बार के पकड़ विश्वास को छोड़ दिया है, वापस आओ, दोबारा हमारे साथ जुड़िए। यदि आपको छोड़ने का लालच दिया गया, थोड़ी देर और रुकें, यहाँ पर आपके लिए कमरा है। मैं आप सबको इन शब्दों को सुन या पढ़ रहे हैं से अनुग्रह करता हूँ। आओ हमारे साथ जुड़ो, आओ मसीह के शांत बुलाहट को सुनो, अपना क्रूस उठाओ और उसका अनुसरण करो। आओ हमारे साथ जुड़ो, यहाँ पर आप पाएंगे जो अमूल्य है कीमत से परे। मैं गवाही देता हूँ कि आपको यहाँ पर अनंत जीवन के शब्द, मुक्ति की आशीष का वादा और शांति के मार्ग का आनंद मिलेगा। मैं नम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप की स्वयं की सच्चाई के लिए खोज आपके हृदयों की कामना होगी कि आओ हमारे साथ जुड़ो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
our most kind and loving Heavenly Father. It has been a pleasure. हमारे
दयालु और प्रेमी पिता, ये हमारी बहुत आशीष रही है कि भविष्यद्वक्ता हमें सबको यहाँ पे निर्देश दे गया और चर्च के मार्गदर्शक द्वारा हम उनके काम के लिए धन्यवाद देते हैं. हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ना केवल उनका शब्द को सुने बल्कि उनके कार्य को भी करें. हम अपने प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अपने प्रेम को उनको देते हैं. उनके काम के प्रति हमारे बहुत प्यार है. हम सब उनके कामों में जुड़ सकें और प्रेम को बांट सकें और जो अनुबंध और धर्मविधि हमने की है उनके द्वारा हम सब कर सकें. हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो उत्तरों की प्रतीक्षा करते हैं, जो बहुत कठिनाइयों से जीवन गुजार रहे हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि उनको एक निर्देश मिल सके और वो क्या देखना चाहते हैं. और जो भी इस सत्र के बाद में हमें जो निर्देश मिलते हैं उसके हम पालन कर सकें. इन सब की हम विनम्रता से प्रार्थना करते हैं. हम धन्यवाद देते हैं आपके अपने मुक्तिदाता के लिए, उद्धारकर्ता के लिए, यीशु मसीह के लिए. आमीन.
This has been the first session of the 183rd Semi-Annual.
तीन दिनों के संतों यीशु मसीह के गिरजे का 183वां अर्थ वार्षिक महासम्मेलन है. Speakers were selected from the general authorities
and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle.
संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा दिया गया था.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
इसका प्रसारण Bonneville Distribution द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया है. बिना लिखित अनुमति इस कार्यक्रम के नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है.